आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
अमेरिका के बड़े जख्म को नहीं कुरेदेगा तालिबान, आज नहीं होगा अफगान सरकार का शपथ ग्रहण। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े जख्म पर नमक छिड़कने की तैयारी में जुट तालिबान ने अब अपना इरादा बदल लिया है। रिपोर्ट की माने तो तालिबान ने 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर होने वाले अफगानिस्तान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है। रूस की टास समाचार एजेंसी ने बताया कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी नवगठित अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को सहयोगियों के दबाव के बाद रद्द कर दिया है। अफगान सरकार के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्ला समांगानी ने ट्विटर पर कहा कि नई अफगान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कुछ दिनों पहले रद्द कर दिया गया था। लोगों को और भ्रमित न करने के लिए इस्लामिक अमीरात के नेतृत्व ने कैबिनेट की घोषणा की और यह पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया जा रहा था कि तालिबान की अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण 9/11 की 20वीं बरसी के दिन हो सकता है। 9/11 आतंकी हमला अमेरिका के इतिहास का काला दिन है, जिसमें करीब 3,000 से अधिक लोगों की मौतें हो गई थीं। 9/11 अटैक के 20 साल, 3,000 मौतें और तबाही का वो खौफनाक मंजर, आज ही के दिन WTC पर आतंकी हमले से दहल उठी थी दुनिया। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को आज 20 साल पूरे हो गए। साल 2001 यानी 20 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका आतंकी हमलों से दहल उठा था। 11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसने 2,996 लोगों की जान ले ली। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस घटना को अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया था। 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी भूला नहीं है, जब रोज की तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी करीब 18,000 कर्मचारी रोजमर्रा का काम निपटाने में जुट थे। लेकिन सुबह 8:46 पर कुछ ऐसा हुआ कि अब तक सामान्य सी मालूम पड़ रही यह सुबह खौफनाक हो उठी। अब घोटालों को दबाना या घोटालेबाजों को बचाना होगा मुश्किल, जाने कैसे। आने वाले दिनों में बिहार में घोटालों को दबाना या घोटालेबाजों को बचाना संभव नहीं होगा। राज्य सरकार इसकी पुख्ता तैयारी करने जा रही है। आज़ादी के 74 साल बाद प्रदेश में अंकेक्षण संहिता और अंकेक्षण मैनुअल लागू होगा। इनका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसमें 11 तरह के ऑडिट का प्रावधान किया गया है। इसे जल्द राज्य मंत्रिपरिषद के पास अनुमोदन के लिए भेजने की तैयारी है। प्रस्तावित अंकेक्षण संहिता और अंकेक्षण मैनुअल में घोटाला, अनियमितता, दुर्विनियोग और गबन जैसे वित्तीय दोषों को करीने से परिभाषित किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में तार्किक ढंग से वित्तीय दोषों को इंगित करना होगा। इसका मकसद राज्य सरकार की व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों को कानून के शिकंजे तक पहुँचाने के लिए आसान रास्ता तैयार करना है। किसी भी विभाग या कार्यालय का ऑडिट के लिए चयन करते वक्त वित्त विभाग का अंकेक्षण निदेशालय 2 दर्जन से अधिक बिंदुओं के चेकलिस्ट के जरिए ऑडिट का मकसद जाहिर करेगा। इसके अलावा अंकेक्षकों के लिए अलग अलग तरह के अंकेक्षण में जरूरी दस्तावेजों की पूरी फेहरिस्त दी गई है। जाँच के तरीकों से लेकर गड़बड़ी पकड़ने की पूरी प्रक्रिया को चरणवार निर्देशित किया गया है। 20 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, सरकार को घेरेगी। कांग्रेस सब यात्राओं के जरिए जनता को जोड़ेगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से निकाली जाने वाली यह यात्रा 20 सितंबर से निकाली जाएगी। प्रदेश के 40 से 44 जिलों से गुजरने वाली यह यात्रा 12,000 किमी की होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रणनीति व सलाहकार कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। शुक्रवार को चुनाव समन्वय समिति की बैठक में 40 नामों की पहली सूची पर सहमति बन गई। चुनाव समिति की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होगी। शुक्रवार को सुबह 11 बजे प्रदेश मुख्यालय पहुंची प्रियंका ने रात लगभग 11 बजे ही मुख्यालय छोड़ा। लगभग 12 घंटे तक ताबड़तोड़ बैठके कर उन्होंने अपने विरोधियों को साफ संदेश दिया कि यूपी में कांग्रेस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ेगी। शुक्रवार को उन्होंने रणनीति कमेटी, चुनाव समन्वय कमेटी, सलाहकार कमेटी समेत जोनवार समीक्षा की। प्रतिज्ञा यात्रा 4 अलग अलग जगहों से निकाली जाएगी और बड़े शहरों, कस्बों और गांवों से होकर गुजरेगी। 20 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच यात्राएं निकाली जाएंगी। यात्रा के दौरान जनता को भाजपा के घोषणा पत्र के अपूर्ण वादों, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला हिंसा, बेरोजगारी आदि पर सरकार को घेरा जाएगा। बिहार के बच्चों में बढ़ रहा है वायरल फीवर का प्रकोप, शिशु वार्ड फुल। जिले में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को मायागंज अस्पताल के ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे कुल बीमार बच्चों में से 50% से ज्यादा वायरल के मरीज निकले। हालांकि ओपीडी से एक भी वायरल फीवर का मरीज इलाज के लिए इंदौर नहीं भेजा गया, लेकिन मायागंज अस्पताल के इमरजेंसी स्थित शिशु वार्ड में शुक्रवार को 14 मरीज इलाज के लिए भर्ती किए गए। इनमें से 6 मरीज वायरल फीवर की गिरफ्त में पाए गए। शिशु रोग ओपीडी में 74 बीमार बच्चे इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से 43 बच्चे वायरल फीवर के थे। इन बच्चों में सर्दी, खांसी व तेज बुखार था। हालांकि ओपीडी में बैठे चिकित्सकों ने इन बच्चों को भर्ती करने की सलाह देने के बजाय कुछ दवा देकर घर भेज दिया। मायागंज अस्पताल के इमरजेंसी स्थित शिशु वार्ड के 10 बेड सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से फुल थे, लेकिन यहां के बच्चों को जब पीजी शिशु रोग विभाग के इंदौर में शिफ्ट किया गया तो वार्ड खाली हो गया। लेकिन शुक्रवार की शाम 5 बजे तक यहां पर 14 नए मरीज भर्ती हो गए थे।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT स्मार्ट कास्ट की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HTSmartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन HT Smartcast।